তুমি সর্বেশ্বরে ব্রজেন্দ্র কুমার, তুমি সর্বে তোমার ইচ্ছায় বিশ্ব সৃজন সম্ভার, তোমার ইচ্ছায় সৃজন সম্ভার, তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর তব ইচ্ছা মত ব্রহ্মা করে না সৃজন, তব ইচ্ছা মতে বিষ্ণু করে না পাল, তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার, তব ইচ্ছা মত শিব করে না সম্ভার, তব ইচ্ছা মত বিষ্ণু তব ইচ্ছা মত মায়া সৃজে কারাগার, তব ইচ্ছা তুমি সর্বে তব ইচ্ছা মতে জীবে জনম মরণ, তব ইচ্ছা মতে জীবে জনম মরণ, সমৃদ্ধি নিপাত দুঃখ সুখ সংঘট, মিছে মায়া বদ্ধ জীব আশা পাশে ভিড়ে, তব ইচ্ছা বিনু কিছু করিতে ন পারে, তব ইচ্ছা হে তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার, তুমি তো রক্ষক আর আলোক আমার, তুমি তো তোমার চরণ বিনু আশা নাহি আর, তোমার চরণ বিনু আশা নাহি আর, তুমি সর্বেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার, নিজ বল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া, তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করি, তুমি সর্বেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার, ভকতি বিনোদ প্রভু দিন অকিঞ্চন, ভকতি বিনোদ তোমার ইচ্ছায় তার জনম মরণ, তোমার তুমি সর্বেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার, জয় কৃষ্ণ বলরাম কৃষ্ণ বলরাম কৃষ্ণ বলরাম, জয় কৃষ্ণ বলরাম, জয় রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, জয় রাধে শ্যাম, নিতাই গৌর হরি বোল হরি বোল হরি বোল হরি, বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য সূত্র সত শ্রী শ্রীমত ভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ মহারাজ কি গ্রন্থরা শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ কি তাই গৌর হরি প্রেমানন্দে, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, নারায়ণম নমস্কৃত্য নরম চৈব নরোত্তমম দেবীম সরস্বতীম ব্যাসম ততো জয়মুদীরয়ে, কৃষ্ণায় বাসুদেবায় देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम लोग श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 11 पाठ करेंगे। श्री प्रह्लादो वाच परः स्वश्चेति असद्ग्राहः पुंसां यन्मायया कृतः विमोहित धियां द्रष्टु विमोहित धियां दृष्ट तस्मै भागवते नमः। श्री प्रह्लादो वाच परः स्वश्चेति असद्ग्राहः पुंसां यन्मायया कृतः विमोहित धियां दृष्ट तस्मै भगवते नमः। कोई एक जन प्रह्लाद वाच परहस्वश्चेत्य सद्ग्राह पुंसान्यन्मायया कृतः विमोहित धियां दृष्ट तस्मै भगवते नमः। शब्दार्थ श्री प्रह्लादो वाच। श्री प्रह्लाद महाराज ने उत्तर दिया परह शत्रु स्वह स्वजन या मित्र च भी इति इस प्रकार असत ग्राह जीवन की भौतिक अवधारणा पुंसाम मनुष्यों की यत जिसकी मायया माया से कृतः उत्पन्न विमोहिता मोहग्रस्त धियां बुद्धि वालों का दृष्टः साक्षात अनुभव किया गया तस्में उस भगवते श्री भगवान को नमः मेरा नमस्कार है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। प्रह्लाद महाराज ने उत्तर दिया मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया ने मनुष्यों की बुद्धि को मोहित कर मेरे मित्र तथा मेरे शत्रु में विभेद उत्पन्न किया है। वस्तुतः मुझको अब इसका वास्तविक अनुभव हो रहा है। यद्यपि मैंने पहले इसके विषय में प्रामाणिक स्रोतों से सुन ही रखा है। तात्पर्य जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विनित साधु अपने असली ज्ञान के बल पर एक विद्वान एवं भद्र ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। जो पंडित है अर्थात जो वास्तव में विद्वान है समदर्शी है उन्नत भक्त जिन्हें प्रत्येक वस्तु का पूरा पूरा ज्ञान है किसी भी प्राणी को मित्र या शत्रु के रूप में नहीं देखते हैं अपितु व्यापक दृष्टि होने से वे सबों को कृष्ण के अंश के रूप में दिखते हैं। जैसा किसी चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। प्रत्येक जीव भगवान का अंश होने के कारण उनकी सेवा के निमित्त है। जिस तरह शरीर का प्रत्येक अंग पूरे शरीर की सेवा के लिए ही होता है, सारे जीव भगवान के दास के रूप में एक से हैं, लेकिन वैष्णव स्वाभाविक ही अपनी विनम्रता के कारण प्रत्येक अन्य जीव को प्रभु कहकर संबोधित करता है। यह अन्य दासों को इतना आगे बढ़ा चढ़ा देखता है कि उसे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस तरह वह भगवान के अन्य सभी भक्तों को प्रभु के रूप में स्वीकार करता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है, लेकिन अपनी विनम्रता के कारण वैष्णव दास दूसरे दास को अपना प्रभु या स्वामी मानता है। प्रभु का ज्ञान गुरु के ज्ञान से प्रारंभ होता है। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो जस्य अप्रसता प्रसादान नगति कुतोपि। गुरु की कृपा होने पर मनुष्य को कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु की कृपा बिना किसी भी तरह की प्रगति नहीं हो सकती। साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः, किंतु प्रभुर्जय प्रिय एव तस्य वंदे गुरुः श्री चरणारविंदम। गुरु का उतना ही आदर दिया जाना चाहिए जितना कि परम भगवान का किया जाता है, क्योंकि वह भगवान का परम विश्वस्त सेवक हैं। इसे समस्त शास्त्रों ने स्वीकार किया है और सारे विद्वान इसका पालन करते हैं। अतएव मैं ऐसे गुरु के चरण कमलों को सादर प्रणाम करता हूँ जो श्री हरि कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं। गुरु अर्थात ईश्वर का दास भगवान की अत्यंत गुह्य सेवा में लगे रहते हैं। इस सेवा से समस्त बद्ध जीवों को माया के चंगुल से मुक्त किया जाता है, जिसमें मनुष्य सोचता है यह व्यक्ति मेरा शत्रु है और यह मेरा मित्र है। वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त जीवों के मित्र हैं और सारे जीव भगवान के नित्य दास हैं। एकत्व तो इसी ज्ञान से संभव है, न कि कृत्रिम विचार से कि हम में से प्रत्येक ईश्वर है या ईश्वर के तुल्य। असली ज्ञान तो यही है कि ईश्वर परम प्रभु है और हम सभी परमेश्वर के दास हैं। अतएव हम सभी एक ही स्तर पर हैं। प्रहलाद महाराज को उनके गुरु नारद ने पहले ही यह सिखला दिया था, किंतु तो भी प्रहलाद को आश्चर्य हो रहा था कि किस तरह मोहग्रस्त जीव किसी को अपना मित्र और किसी को अपना शत्रु मानते हैं। जब तक मनुष्य द्वैत दर्शन से चिपका रहता है और किसी को मित्र तथा किसी को शत्रु मानता है, तब तक उसे माया के पास में समझना चाहिए। मायावादी दार्शनिक भी भ्रम में रहते हैं, क्योंकि वह समस्त जीवों को ईश्वर मानकर उन्हें एक समझते हैं। कोई भी व्यक्ति ईश्वर के तुल्य नहीं हो सकते हैं। दास कभी भी प्रभु या स्वामी के तुल्य नहीं हो सकता। वैष्णव दर्शन के अनुसार स्वामी या प्रभु एक है और दास भी एक है, लेकिन स्वामी तथा दास में मुक्त अवस्था में भी अंतर बना रहता है। बद्ध अवस्था में हम सोचते हैं कि कुछ प्राणी हमारे मित्र हैं और कुछ हमारे शत्रु हैं। इस तरह हम द्वैत भाव में बने रहते हैं, किंतु मुक्त अवस्था में ईश्वर प्रभु के रूप में और सारे जीव ईश्वर के दास के रूप में होते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखानितं च। नमों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो इस सप्तम स्कंद के इस पंचम अध्याय में सप्तमहाजन प्रहलाद महाराज की साथ उनके पिता हिरण्यकशिपु का व्यवहार वर्णन है। तो कुछ दिन पहले प्रहलाद महाराज का उत्तर के बारे में कई दिन चर्चा हुआ था बड़ी गंभीरता से। आज ही प्रहलाद महाराज का उत्तर ही है। पहले प्रश्न उनके पिता पूछा था, गुरुजी से क्या सीखा, मतलब स्कूल से क्या सीखा, गुरुजी का नाम तो नहीं लिया था, अब बताओ अब क्या हुआ। वो जो उत्तर दिया उन्हें पिताजी, तो उनको कुछ दोष नहीं दिए छोटे बच्चा मान करके, लेकिन गुरुजी के ऊपर क्रोध किए, कंप्लेन हैवी कंप्लेन हो गया। कोई और इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट डायरेक्ट चेक करके देखा कि बेटा उनका गड़बड़ है, तो हैवी कंप्लेन आया कि तुम्हारा इंस्टीट्यूट में कोई बदमाश घुस करके दिमाग खराब करते हैं बच्चों के क्या सूद, उनके ही राजकुमार का ही बुद्धि खराब हो गया। तो ये हैवी कंप्लेन क्या इन्वेस्टिगेशन स्वयं डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल दोनों अधिकारी वो करना चाहते हैं प्रहलाद महाराज को लेकर के, फुसला करके बड़े कायदा से पूछते हैं कि बेटा हम तुम्हारे गुरु हैं, टीचर हैं, सच बता दो बेटा, ये तुम्हारा जो बुद्धि को भेद जो खराब कर दिए, भक्त हो जान तो खराब कर दिए ना, तो ये बुद्धि भेद कौन आकर तुझे कराया, ना अपने आप हुआ, क्योंकि हमारा तो ये स्कूल कॉलेज में सिलेबस में है ही नहीं, लाइब्रेरी में है ही नहीं ऐसा कोई पुस्तक, तो कौन कोई छद्म वेश में आकर तुझे टीचिंग कर गया। वह क्या उनको पूछ रहे हैं, गुरु जी ने बहुत फुसला करके जितने प्रकार से कोई स्टूडेंट से बात को निकाला जा सकता है, 5 साल का लड़का है शिशु, कोई बहला फुसला कर बोलने से बता देगा, तो उनको पूछ रहे हैं, उनसे जानने चाह रहे हैं कि बता दो प्लीज, सच बता बता दो, और ये तुम्हारा बुद्धि, ये खोटा बुद्धि कैसे आया, बुद्धि भेद कैसे हो, ऐसी बात आप कह रहे हो। तो उन्हें बार बार ऐसे पूछने पर प्रहलाद महाराज तो पहले चुप थे, लेकिन बार बार उनके गुरुदेव जब पूछे तो अभी आंसर देना शुरू करते हैं। अभी ये 11 नंबर श्लोक से लेकर के 14 नंबर श्लोक तक के 4 श्लोक में प्रहलाद महाराज अपना उत्तर देंगे। वही बड़े गंभीर उत्तर है, साधारण पुरुष समझ नहीं पाएंगे, उनको गुरु जी नहीं समझ पाए, देवर डायरेक्टर एट दैट टाइम, तभी नहीं समझ पाए, हम कौन से गाय के गोबर है समझेंगे उसको। लेकिन फिर भी तो जैसे प्रहलाद महाराज के उत्तर के ऊपर कई दिन बड़े बड़े रथियों के द्वारा चर्चा किया गया था, इस प्रकार प्रहलाद महाराज के 4 उत्तर के ऊपर भी चर्चा होना चाहिए। सिलेक्टेड पर्सन जो उसके ऊपर गंभीर चिंतन करके बोल सकते हैं उनको बोलना देना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज आंसर देते हैं कि इनको उनके पिताजी नहीं, असुर वर्यादि नहीं, तो साक्षात उनके गुरु हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं प्रहलाद वाच, परह स्वश्च इति असद ग्राह, वहाँ भी असद ग्राह की बात कहते, वहाँ भी असद ग्राह की बात करते कि पुनसा यन माया कृत विमोहित ध्यान दृष्ट तस्मी भगवते नमः। प्रहलाद महाराज कह करके बोले, गुरुजी को आंसर देते हुए और गुरुजी कुछ नहीं बोले, सबसे पहले हाथ जोड़ के प्रणाम की, बोले हे प्रभु प्रणाम है आपको, भगवते तस्मी नमः, क्यों न त्वन माया जन माया, आपके माया का क्या प्रभाव, क्या कमाल है यार, ये गुरुजी हैं हमारे, वो भी माया से इतने फंसे हुए हैं, ये स्वतः पर ये मेरे मित्र, ये मेरे शत्रु, इस भावना से वो भी फंसे हैं, ये तो केवल आपकी माया के खेल है प्रभु, उनको मैं क्यों दोष दूं। तो प्रहलाद महाराज ने अपने गुरु को दोष नहीं दिए, ये नहीं बता कि तुम जाओ वानप्रस्थ लेके वन में भजन करो, हरि आश्रय करो, ये नहीं बता, लो समझेंगे नहीं क्या बताओ, बोले ये तो प्रभु तुम्हारे माया के खेल है, तुम्हारी माया के कमाल है, इसलिए उत्तर देते हुए सबसे पहले हाथ उठा करके प्रणाम करते हैं, तस्मै भगवते नमः यन माया कृतः, जिनकी माया के चलते ये हमारे दोनों गुरुजी भी इतने फंसे हुए हैं, और मुझे बोलते हैं मेरा बुद्धि खराब है, अरे बुद्धि खराब तो तुम्हारा ही है, तुम संसार में पचड़ में फंसे हुए हो, मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा बुद्धि कैसे खराब है, मेरा बुद्धि तो खराब है ही नहीं, मैं तो सही हूं, गलती आप ही है, आप ही फंसे हुए, और मुझे बोलते हैं दोष दे रहे हैं, ये क्या करूं, ये माया के खेल है। यही माया की प्रभाव है। तो आगे चल करके उसका कारण बताएंगे और बता भी देंगे कि किस प्रकार मेरा बुद्धि इस प्रकार हुआ है, कारण बताएंगे, बड़े तात्विक ढंग से बताएंगे। तो यहाँ पर प्रह्लाद महाराज ने अपने गुरुजी के ये प्रश्न को सुन करके उनके उत्तर में सबसे पहले भगवान की माया को और भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलते हैं, प्रभु धन्य है आप, धन्य है आपके माया। अभी तक कौन, आगे चलकर कहेंगे, कौन आपके माया को पालेगा, पार पाया है? बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े दिग्गज विद्वान, तपस्वी सब माया के चंगुल से फंसे हैं। माया से बचने का केवल एक ही उपाय है, मायापति स्वयं आप अगर कुछ करें, माया को डांट दे कि उन्हें छुड़ा दे, छुट सकता है। माया मेम तरंतिते, जो भगवान की माया से बचना चाहते हैं भगवान की शरणागति चाहिए। तो भगवान की माया, यद्यपि प्रभुपाद जी ने इसमें सीधा सीधा शुरुआत करते हैं कि कैसे भेद बुद्धि होता है लोगों का, द्वैत बुद्धि। अलग अलग प्रभुपाद जी गीता से श्लोक लेते हैं कि जो पंडित होते हैं, समझदार व्यक्ति, वो समदर्शन करते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडित, समदर्शी हो, ये समदर्शी होते हैं। लेकिन समदर्शी का मतलब नहीं है कि एक कुत्ता और चंडाल को भी अल्टर मिलाकर घुसा देंगे, तो पंडित बोलेंगे तुम भी आ जाओ समान है, ब्राह्मण और आप समान है ना, नहीं ऐसा नहीं करेंगे कि हाथी को लाकर घुसा देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। वो बहिर रूप से समान नहीं देख सकते हैं, भगवान की उपस्थिति सब में है तो हम इस रूप में देख सकते हैं, समदर्शन तक का क्या। लेकिन जिनको भगवत अनुभव नहीं है और उन्हें कहते हैं कि वैष्णव कैसे नम्र होता है, यद्यपि समान सभी हैं, भगवान के दास के रूप में यही निश्चित सत्य है। समदर्शन का वास्तविक सिद्धांत है एकल ईश्वर कृष्ण आरसभुभृत्य, एक मालिक है कृष्ण और हम सब उनके सर्वांट हैं। अब इस भौतिक जगत में सर्वांट का कई ग्रेड होता है, कोई हाई ग्रेड सर्वांट, कोई लो ग्रेड सर्वांट, कोई कम पेमेंट में, कोई हाई पेमेंट में, कोई बड़े पोस्ट में, कोई छोटे पोस्ट में उनको माना जाता है। लेकिन भगवान एब्सोल्यूट है, उनके पास ऐसे नहीं हो सकता। भगवान के पास छोटे से छोटे, निम्न से निम्न सेवक भी इतने ही महत्वपूर्ण है जो बड़े से बड़ा सेवक भी इतने ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे जैसे कमी भगवान में नहीं, भगवान सबके लिए समान है। तो जितने भी इस संसार में है, भगवान को छोड़ करके इस संसार में क्या हो, और दुनिया संसार में भी भगवान को छोड़ करके यह लोक परलोक जो लोक भी जो भी जो कुछ हैं सब भगवान के दास दासी हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, इसलिए सब समान है। दो ही केवल अंतर है, एक प्रभु और एक दास, बस यही दोनों ही स्थिति है, बाकी कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से सब प्राणी आपको समदर्शन करना चाहिए, भाई हम समान है, तू भी सेवक मैं भी सेवक, तू भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना, उसमें क्या है। तो इस प्रकार यही वास्तविक यूनिफिकेशन है, एकत्व है। लेकिन फिर भी जो वैष्णव भक्त होते हैं अपने स्वाभाविक दैन्यता के कारण दूसरे को प्रभु करके मानते हैं, वो फ्रेंड करके नहीं मानते। आप कोई सर्विस में स्टाफ में जिसे आपस में बात करते हैं, हाँ हेलो भाई साहब जिसे करते हैं, ये समानता इस प्रकार नहीं, वैष्णव का स्वतः दैन्यता होता है। तो एक सेवक दूसरे सेवक को बहुत प्रभु करके मानता है और उनसे बहुत सीख, बोलते उनसे कुछ बहुत कुछ सीखा जा सकता है, ये दैन्यता प्रकाश करते हैं। और इस प्रकार की प्रभुता ज्ञान वास्तविक गुरु की कृपा से ही शुरू होता है, प्रभुपाद जी ने इसको देते हैं। जिनको गुरु कृपा हुआ है वो इस प्रकार भगवान और भगवान के दासत्व को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए वही समझ सकते हैं, वही करते हैं, बाकी नहीं कर सकते। जिससे प्रसादात भगवत प्रसाद। तो इसमें यद्यपि घटनास्थल ऐसे है, श्री नीता गौर सुंदर के घटनास्थल ऐसे है कि प्रह्लाद महाराज अपने गुरुदेव को बता रहे हैं इसने पर, लेकिन इस श्लोक में विशेष करके प्रहलाद महाराज ने बहुत बल दे करके प्रणाम करते हुए भगवान के माया को कहते हैं, बोले प्रभु आप मायापति हैं, आपके माया का क्या खेल है, ये माया के प्रभाव से आकर के यही बुद्धि और मुझ भी कहते हैं कि मैं हूं। बोलते मैं तो पहले सुना था। बोले गुरुजी मैंने बताया था, मैंने सुन रखा था कि माया का ऐसी अचम्मा खेल, लेकिन आज दृष्ट हूं, आज मैं देख रहा हूं सामने, ये मेरे गुरु प्रिंसिपल हेड वो भी ऐसे फंसे, मेरे ऊपर दोषारोपण करते हैं, खुद फंसे हुए हैं, मुझे बोलते हैं तुम्हारा बुद्धि खराब है, ये तो मैं साक्षात अभी देख रहा हूं आपके माया का प्रभाव, तो इसलिए हे प्रभु आपको प्रणाम है। तो यहां पर सही माने में चिंतन किया जाए, प्रहलाद महाराज जी भगवान के माया को ही मुख्य मान करके, उन्हीं को सम्मान करके, जब स्व पर भिन्नता दृष्टि, ये सब माया के ही प्रभाव है और कुछ नहीं, और किसी को दोष क्यों दूंगा, ये तो आप कहे माया के दोष है सब प्रभाव के। तो अभी हम इस माया के ऊपर चर्चा अगर करेंगे, जो थोड़ी बहुत समय बचा है उसको समझेंगे, ये माया कितने महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। हम लोग सारे दुनिया में दूसरे क्यों गड़बड़ किया, तो माया में फंसा हुआ है, माया मोहित है, या माया मोहित की बात कहा, मोहित धिया बुद्धि माया में मोहित हो गया, ये बात कहा गया, माया में फंसे हुए, माया 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 समझ, लेकिन कोई जानते हैं माया है क्या। माया साधारण बात नहीं है, माया का आइडेंटिफिकेशन, उसका आईडी देखो, उस सीधा माया का अपना कुछ नहीं, भगवत माया। यहां भी प्रहलाद महाराज ने भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं मम मायाद्वत्तया, ये माया मेरी है और किसी का नहीं है, माया तो जड़ है, कोई जड़ शक्ति, ये माइक्रोफोन ये जड़ है, उसके क्यों गाली देंगे भाई, काम नहीं करता भाई, कनेक्शन नहीं है, वो गाली देंगे माइक्रोफोन नहीं, तो माया को दोष देने से क्या फायदा, माया तो जड़ शक्ति है, एक्टिवेट हो रहा है भगवत शक्ति से, इसलिए भगवान कहते मम माया, ये और कोई नहीं, अपनी कुछ नहीं उनका, मेरी है वो, मेरा पावर है इस काम कर रहा, इसलिए माया को पार पाने वाले कोई बड़े बड़े ऋषि देव महादेव कोई माइकल अलग तक हो ही नहीं, कोई हो ही हुआ नहीं कि हो नहीं सकता, क्योंकि ये भगवान की अपनी शक्ति है, भगवान को बोलते मम माया, इसीलिए दुरत्तया, कोई उसको टैकल करना चाहता है तो केवल एक ही उपाय, माँ में वही प्रपद्यंती माया में, मेरे शरण में आए मैं छुटकारा कर दूं, तब नहीं तो कोई उपाय नहीं। तो ये भगवान की माया, ये माया माया इदम जगत, ये संपूर्ण जगत माया रचित है, हमें भजन गाए माया ही रचित कारागार किया, माया के ये माया आशा फास में से सब माया के ही खेल है, प्रभु आपकी इच्छा से सारे देवी देवता जन्म मृत्यु समृद्धि निवाद संगठन सब कुछ हो रहा है और माया सब कुछ चकला रहा है। व्हाट इज अबाउट माया, माया क्या है, यद्यपि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस महत्वपूर्ण विषय को ज्ञान देने के लिए भगवान ने स्वयं ये ज्ञान को देते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान है ना, तो किसको दिए ना, सबसे पहले जो माया को समझने के लिए योग्य स्टूडेंट है उसी को दिए, श्री ब्रह्मा जी, ही इज द फर्स्ट, सबसे प्रथम जीव ब्रह्मा, भगवान की आपने ही पुत्र है, तो उनको सिखाए भगवान ने, जब उनको ही चतुश्लोकी भागवत बोले तो उसमें बोले डियर ब्रह्मा जी आपको मैं सिखा रहा हूं, ये बहुत गुरुत्वपूर्ण शिक्षा सीखो, न क्या न मैं ही परमार्थभूत वस्तु हूं, अगर वास्तविक अर्थ है, अर्थ नहीं परम अर्थ है, तो मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई और है, कुछ है ही नहीं, जो कुछ मेरे में संबंधित जो मैं ही हूं अर्थ परमार्थ में ही, और मैं आपको मेरे माया के बारे में बताना चाहता हूं, अटेंटिवली हियर केयरफुली सुनो। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं अपनी माया का, माया मुक्ति के ज्ञान पहले नहीं बताया, बोले नहीं वो तो बात की बात है, बोले इसी को तो समझो भ्रम क्या है, नहीं तो भ्रम से निकालोगे कैसे, जो इसको नहीं जानते हैं कैसे निकलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो भगवान को ज्ञान, ब्रह्मा जी को भगवान ज्ञान देते हुए, तो माया के ज्ञान सबसे पहले दिए, तो माया के ज्ञान ब्रह्मा जी को समझाते हुए भगवान कहते हैं क्या, माया का डेफिनेशन बता दो, रीते अर्थ जत प्रतियेत न प्रतियेत च आत्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम जथा भास जथा तमः। बड़ी क्लियर कट भगवान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिए। माया क्या है दो उदाहरण के साथ बताते हैं। पहले लाइन में इस श्लोक में भगवान ने माया की दो लक्षण बताए, दो लक्षण माया की बताए। सबसे पहले लक्षण बताते हैं कि ब्रह्मा तू मेरे माया को जान, ये मेरे दो लक्षण वाली माया है। वो कैसा है ना, रिते अर्थ जत प्रतियेत, रिते मतलब बिना, जिसके व्यतिरेक में। भगवान बोलते हैं मेरे बिना, मेरे व्यतिरेक में जिसका प्रतीति होता है, मतलब भगवान के प्रतीति न होने पर जिसकी प्रतीति होता है, या भगवान के प्रतीति होने पर जिसका प्रतीति हो ही नहीं सकता। एक रित्य अर्थ जत प्रतीयत, मतलब भगवान के प्रतीति जहां होता है वहां माया हो ही नहीं सकता। वाह ना, ना भगवान ना होने से माया हो सकता उनके ऑप्शंस, उनके ऑप्शंस में। तो फिर इसलिए बोलते हैं कि जहां मैं रहता हूं वहां माया नहीं आ सकता, वही बड़े दूर बाहर मेरे से अलग दूर, इसलिए बहिर्मुख माया थी, एक्सटर्नल एनर्जी कहा गया, मेरे पास भटक नहीं सकता, शर्म का मेरे पास नहीं आता, बहुत दूर मेरे से, भगवान से बाहर। भगवान से बाहर कुछ है ही नहीं, भगवान विभू तत्व है, उनसे बहिर तो कोई कल्पनातीत है, उसे होगी कैसे सकता है। लेकिन फिर भी यही समझना पड़ेगा, भगवान की साकार सविशेष अभिव्यक्ति जहां पे है उससे अलग दूर जो है वही है। तो एक पहला लक्षण है कि जहां भगवान नहीं है, भगवान के बिना जिनका प्रतीति होता है, या भगवान के प्रतीति होने पर जिसका प्रतीति हो ही नहीं सकता, यह है पहला लक्षण। अच्छा, अभी इसको ढंग से समझते हैं। भगवान की प्रतीति होना, भगवान के प्रतीति होने का मतलब ऐसे जाना जाता है कि भगवत तत्व ज्ञान की उपलब्धि होना, भगवत तत्व ज्ञान की उपलब्धि होना। दूसरा प्रतीति के अर्थ अगर ऐसे माना जाए प्रतिगतम अर्थ में प्रतीति को, तो ऐसे माना जाएगा भगवत उन्मुखता न होने पर, भगवान के प्रति उन्मुख न होने पर जिनका प्रतीति होता है, इसकी भगवत प्रतीति, भगवत उन्मुखता। माया के प्रतीति, माया के उन्मुखता। तो माया के प्रतीति होता है जब भगवान की प्रतीति नहीं होता, भगवान की उन्मुखता होने से माया की उन्मुखता हो नहीं सकता, भगवत बहिर्मुख जन का ही माया की उन्मुखता हो सकता है, इसको बताते हैं। तो उसमें उसको अगर इस लक्षण से समझेंगे तो ये सूचित होता है कि भगवान की तत्वज्ञान जिसको है, जो भगवान की उन्मुख हैं, उनको माया की उन्मुखता हो नहीं सकता, वो माया को समझ लेंगे अच्छा से, ये झूठा है, मिथ्या है, अनित्य है। जिनको भगवत अनुभव हो चुका है, जिनको भगवत उन्मुखता हो चुका है, उन्होंने माया को मिथ्या अनित्य करके जान लेंगे और माया के प्रति आकृष्ट नहीं होंगे, मतलब माया के रचित जो सुख भोग आदि के प्रति प्रलुब्ध नहीं होंगे, लालायित नहीं होंगे, ये सुख भोग के प्रति नहीं होंगे, बोलेंगे अरे तो झूठा है, बेकार। जिनको भगवत उन्मुखता हो चुका है, भगवत अनुभव हो चुका है, और जिनको भगवत अनुभव नहीं हुआ है, जो भगवान के बहिर्मुख जन है, वही लोग ही माया को सत्य मानते हैं, माया के कार्य को ही सत्य मानते हैं, और माया के प्रति आकर्षित भी होते हैं, माया के रचित जो सुख भोग के प्रति लालायित होते हैं उसे भोगने के लिए, पाने के लिए। क्लियर? तो इसमें इसमें और एक समझ लेते हैं कि भगवान से बहिर्गत माया रहता है, भगवान के पास टिक नहीं सकता, ये कहा गया भगवान से बाहर, भगवान से अलग। तो भगवान कहां नहीं है, भगवान से बाहर हो सकता है क्या कुछ? तो संभव ही नहीं है। लेकिन यहां कहने का मतलब है कि भगवान के सविशेष अभिव्यक्ति जहां होता है, भगवान खुद अपने साकार रूप में, सविशेष रूप में जहां प्रकट होते हैं, वो स्थान है भगवत धाम, भगवान के लोक, यहाँ माया के स्थिति नहीं है, प्रतीत हो नहीं सकता। अरे उनसे बहुत दूर इस भौतिक ब्रह्मांड में माया का संसार, इसलिए उसको मायामय जगत कहा गया, इससे दूर यहाँ हो सकता है, बाकी वहाँ तो संभव ही नहीं है। इसलिए बहिर्मुखता, एक्सटर्नल एनर्जी कहा गया, बहिर्माया। अब ये पहला लक्षण समझ में आ गया, रीति अर्थ जत प्रतीयत, मेरे बिना जिसका प्रतीति होता है। अब माया के दूसरी लक्षण भगवान बताते हैं, न प्रतीयत आत्मनिच, बोलते हैं कि मेरे बिना तो वो दिखाई नहीं पड़ता, वो उनका दिखा हो नहीं सकता, लेकिन वो आपने आप भी प्रकट नहीं हो सकता। न प्रतीयत आत्मनि च, वो भी नहीं, वो आपने आप, मेरे बिना तो जिनका दिखता है वो माया है, कि मैं जब हूं तो माया नहीं हो सकता, मेरे बिना भी माया हो नहीं सकता, आपने आप माया अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता। न प्रतीयत च आत्मनि, अपने आप में जो प्रतीति नहीं हो सकता है, तद विद्यात आत्मनो माया, ओ उसको मेरे माया जानो। मतलब इस सेकंड लक्षण में भगवान कहते हैं कि माया के परिचय ऐसा है कि भगवान जहां नहीं है वही माया है, भगवान के प्रतीति होने से माया के प्रतीति हो नहीं सकता, भगवान उन्मुख होने से माया के विमुख होना पड़ेगा, लेकिन वो माया भगवान के बिना भी प्रतीति नहीं हो सकता, आपने आप आपको प्रकट कर ही नहीं सकता, क्योंकि जड़ है, उनके अंदर चेतना है ही नहीं, प्रकट नहीं कर सकता। अरे तो बड़ा गजब की बात है, कैसे समझे, यही तो माया, यही माया है, भगवान के बिना प्रतीति होता है और भगवान के बिना प्रतीति हो ही नहीं सकता। मतलब माया का स्वतंत्र शक्ति है ही नहीं, भगवत के आश्रय बिना माया अपने आप को दिखाई नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, भगवान के आश्रय बिना माया काम ही नहीं कर सकता। इसी कहते हैं न प्रतीयत आत्मनि, वो अपने आप को प्रतीति कर नहीं सकता। अब ढंग से समझिए, बड़े कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, उदाहरण भगवान देते हैं, वो जानते हैं कि ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए भगवान तुरंत उदाहरण दिए प्रैक्टिकली, जथा भास जथा तम, जथा आभास और अंधकार। मैं सोचता हूं कि मैं अपने छोटी बुद्धि के, छोटी समझ के हिसाब से बताऊं तो शायद आप समझ लें, जितना मेरे समझ में आया है कि माया को समझने के लिए ये उदाहरण दिया गया, जैसे सूरज अभी आकाश में उग रहे हैं, एक सूरज, एक अंधकार और एक आभास। आभास को मैं समझाता हूँ आपको, आभास कैसे होते हैं, जैसे सूरज है आकाश में, वो कहीं जल पात्र यहाँ कोई तालाब या कोई हो तो सूरज के प्रति से रिफ्लेक्शन वहाँ आता है, तो दो सूरज तो है ही नहीं, सूरज तो एक ही है, लेकिन यहाँ भी दिखता है, पानी के अंदर एक दिखता है, तो वो जो पानी के अंदर दिखता है वो आभास है, प्रतिच्छवि है, ये सूरज नहीं है। और वो आभास सूर्य के बिना हो सकता क्या? सूरज अगर नहीं होगा छाया हो नहीं सकता काया के बिना, भैया जब काया नहीं तो छाया होगा कैसे? तो आभास प्रतिच्छवि सूर्य के बिना हो नहीं, सूर्य उगेगा, लाइट फोक्स होगा, तभी वो पानी में गिरेगा, तभी दिखेगा, नहीं तो नहीं दिख सकता। और अंधकार, जहां सूर्य रहेगा अंधकार हो सकता है? यहां सूर्य भगवान को पूछो, हे प्रभु भगवान सूर्यदेव, अब अंधकार रात्रि का थोड़ा वर्णन करो, कर सकते हैं? नेवर एवर पॉसिबल, कभी संभव ही नहीं है कि रात्रि और भगवान सूर्य के कोई मीटिंग पॉइंट हो, कोई साक्षात्कार हो जाए, नेवर, संभव ही नहीं। जहां माया अंधकार, जहां सूर्य तहां नहीं अंधकार, कभी हो ही नहीं सकता। जैसे भगवान सूर्य हैं और माया अंधकार है, दोनों कभी एक एक हो ही नहीं, अपने आप फेस कभी मीटिंग हो ही नहीं सकता। अरे कितने 10,000 साल की, 10,00,000 साल से अंधकार कोई घर में पड़ा हो, इतने पुराना सीनियर मैच्योर एक्सपीरियंस्ड अंधकार है, अगर एक बार कोई लाइट ऑन कर दे तो अंधकार तत्क्षणात चला जाता। भाई इतने पुराना अंधकार, टाइम थोड़ा लगेगा ना मिटने में, भाई पुराना डिजीज है, थोड़ा समय लगेगा ना,
लेकिन ये इतने पुराने अंधकार जाने में टाइम लगता है क्या? स्विच ऑन किए तत्क्षणात। तो अगर कोई पूछे भैया ये मुझे थोड़ा बताओ अंधकार का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज अंधर डार्कनेस, अंधकार है क्या, तो क्या बताएं हमने? अंधकार को व्याख्या करने के लिए हमारे पास कोई उपाय है? क्या अंधकार है? आलोक के बिना अंधकार को कोई बोल ही नहीं सकता, उनका परिचय अपना हो ही नहीं सकता, अपना अस्तित्व ही खत्म आलोक के बिना, क्योंकि डार्कनेस इज ओनली द एब्सेंस ऑफ लाइट। अंधकार का एक ही परिचय है कि आलोक का ना होना, आलोक का ना होना ही अंधकार है, उनका और कोई दूसरा आइडेंटिटी नहीं है, और कोई दूसरा परिचय नहीं हो नहीं सकता। तो आलोक के बिना अंधकार को कोई पहचान सकता? देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता बिना ज्योति से। दूसरे उदाहरण से, जैसे सूर्य है और रात है, और बीच में एक समय होता है सुबह सुबह, जैसे 5 बजे 5:30 बजे का टाइम, सूर्य अभी उदय नहीं हुआ लेकिन सब दिखाई पड़ता है। प्रकाश के बिना, सूर्य के बिना तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन दिखाई सब पड़ता है, लेकिन सूरज भी नहीं है अंधकार भी नहीं है और दिखाई भी पड़ता है, एक स्थिति ऐसा होता है ना, उसको बोलते हैं आभास। अंधकार भी गया, अंधकार भी नहीं है, वो सूरज भी आए नहीं अभी, लेकिन सब वस्तु दिखाई पड़ता है, वो स्थिति है आभास। तो भगवान यही उधर देते हैं, ये आभास, वो मेरे बिना अभी मैं भी नहीं आया, अंधकार भी नहीं है, लेकिन ये प्रकट होता है, आभास भी होता है। और अंधकार तो मेरे बिना अंधकार, मैं जब रहूंगा अंधकार हो सकता क्या? नहीं हो सकता। अतः फिर न प्रतीत च आत्मनि, वो अपने आप अपने को प्रकट नहीं कर सकता, ये कैसे क्यों कहते हैं? अंधकार अपने आप को लाइट बिना प्रकट कर देगा, इसका मतलब क्या होता है? जब लाइट रहेगा, लाइट के सहारा लेकर के अंधकार को, लाइट के सहारा लेकर अंधकार कैसे प्रकट होगा? कभी कभी कहते हैं कि जो कैंडल जलाता ना दीप, उसका नीचे ही अंधकार रहता है, वो उसके नीचे रहता है। उसके और एक उदाहरण से आचार्य कहते हैं, जैसे ज्योतिर्मय चीज कोई होता है, कोई ज्योतिर्मय लाइट, लाइटेड वस्तु है, और लाइटेड वस्तु अंधकार को दूरभूत कर दे, जहां लाइटेड वस्तु आ गया तो डार्कनेस खत्म, और लाइट और डार्कनेस खत्म होने का बीच बीच जो है वो आभास है। लेकिन ये डार्कनेस को समझने के लिए, जानने के लिए भी लाइट की आवश्यकता है। बोले सो कैसे? बोलते हैं जैसे आपने अपना शरीर को उदाहरण लीजिए, अपना शरीर में जितने अंग प्रत्यंग है उसमें से एक अंग है जो ज्योति, ज्योति रूप में है, लाइट के साथ उनको परिचय है, वो है आंख, ज्योतिर्मय। चक्षु है इसीलिए सूर्य के साथ, लाइट के साथ संपर्क है उनका, इसलिए हमारा हाथ पैर चेस्ट सर नाक कान किसी के द्वारा कोई देख सकता है, क्योंकि लाइट नहीं है उसमें, ज्योति नहीं है, किसे देखेगा? सब अंधकार, ये सब अंधकार वस्तु, वो देख नहीं सकते हैं, देखने का क्षमता नहीं, देखने का क्षमता केवल ज्योति माया चक्षु है, चक्षु में ज्योति है। तो चक्षु के द्वारा हमारे शरीर के सारे अंग को हम देख सकते हैं, बाकी कोई अंग के द्वारा कोई अंग को देखा नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार बिना ज्योति के, बिना आंख के अंधकार को भी नहीं देखा जा सकता, जाना नहीं जा सकता। इस प्रकार समझे कि अंधकार को जानने के लिए लाइट की ही सहायता चाहिए, क्योंकि लाइट के बिना आश्रय में अंधकार का आपने आईडी नहीं हो सकता, अपना अस्तित्व ही नहीं प्रकाश कर नहीं सकता, जाहिर नहीं कर सकता ज्योति के बिना, और ज्योति के बिना ही संभव हो सकता है, कि ज्योति अगर होगा तो फिर अंधकार हो ही नहीं सकता। मैंने ट्राई टू अंडरस्टैंड, ज्योति के बिना अंधकार हो सकता है, ज्योति उपस्थिति होने से अंधकार कतई संभव ही नहीं है, लेकिन वो अंधकार को जानने के लिए ज्योति की सहारा चाहिए, ज्योति के आश्रय के बिना अंधकार भी अंधकारत्व को प्रकट नहीं कर सकता। उसी को भगवान बोलते हैं कि ये मेरे माया है, और इसी के ऊपर हमारे आचार्य लोग ने ग्रंथ पर ग्रंथ लिख चुके हैं, लंबी लंबी व्याख्या की माया को समझने के लिए। इतने सूक्ष्म ये भगवान की ऐसे एक शक्ति है भगवान की जितनी और शक्तियां हैं इसमें ये शक्ति है कि इतनी विशेष शक्ति है माया शक्ति। एक आचार्य तो कहते हैं कि माया से कभी छुटकारा कोई हो ही नहीं सकता। बोले भगवत उन्मुखता हो गए, भगवत उपलब्धि, भगवत तत्व उपलब्धि हो गया तो माया से छुटकारा। बोले ना, बोले माया के दूसरी फेज पकड़ेगा। बोले माया डबल फेज है, एक जोग माया एक महामाया। बोले भगवान की बहिर्मुखता से महामाया हावी हो गया है, भगवत उन्मुखता से भगवत तत्व ज्ञान होने से जोग माया हावी हो जाएगा, वो माया पकड़ेगा फिर। वो जोग करा देगा भगवान के साथ। एक माया भगवान से वियोग कराता है, एक माया भगवान से जोग कराता है। बोले माया से कभी छूटने का संभव ही नहीं है, ये भगवान की ऐसी शक्ति है माया शक्ति। तो प्रहलाद महाराज यहाँ माया शक्ति की प्रणाम करते हैं, बोलते हैं धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी माया। इस माया के चक्कर में ये इतने बड़े बड़े समझदार गुरु लोग भी स्वयं फंसे हुए हैं स्व पर बुद्धि से, ये मेरा ये दूसरा। और केवल ये दोनों नहीं, पूरा संसार। भगवान तो गीता में खुल कर बता दिए, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्गजान सम्मोहन सर्वभूतानम सर्ग जानती परंतप। इसी के सम्मोहित हो करके, इच्छा और द्वेष से सम्यक रूपण मोहित हो करके, विमोहित हो करके ये सृष्टि होता है बार बार, केवल इसी की मोह के चक्कर में, इसी माया के चक्कर में। क्या चक्कर? न इच्छा और द्वेष, ये मेरा ये दूसरा, यही तो इच्छा द्वेष है। इसी से उत्थित होता है संसार, उसी से द्वंद और उसी से मोह। इस द्वंद मोह से, इच्छा द्वेष से उठने के लिए उपाय मनुष्य को करना चाहिए, और जो इससे उठ गया ऊपर, फिर उसको द्वंद के पचड़ो नहीं, कभी नहीं उनके मन में भावना आ ही नहीं सकता कि ये स्व ये पर। जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज इस स्थिति को प्राप्त कर चुके थे, इसलिए उनके मन में कभी ये भावना उदय ही नहीं होता था कि ये स्व ये पर, ये मेरा ये दूसरा है अलावा है, नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। लेकिन ऐसे प्रहलाद महाराज जैसे अनुभवी व्यक्ति को छोड़ करके बाकी संसार में कितने बड़े बड़े ऋषि मानी पढ़े लिखे, कितने भी बड़े बड़े ज्ञानी ध्यान क्या होना क्यों, सब के अंदर द्वंद मोह इच्छा द्वेष घर करके बैठा है। और वो बिचारे करेंगे क्या, उनका बस नहीं चल सकता, क्योंकि कंट्रोलर ऊपर है, माया डाल कर रखा है, गुण माया अजीव माया, आभास को कहते हैं जीव माया, अंधकार कहते हैं गुण माया। ये भगवान मायापति ऐसे संपूर्ण संसार को आपन माया के चपट में लिए हैं, इसलिए माया मय इदम जगत, कहीं बच नहीं सकता एक रंच भर भी। ये माया से छूटने के लिए माया के ही मदद लेना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा को माया के ही ज्ञान सबसे पहले देते हैं। बोले तो इसी को समझ, क्या चक्कर है ये। तो प्रहलाद महाराज भी अपने गुरुजों की जो प्रश्न को सुन करके यही आश्चर्य होकर बोलते हैं कि धन्य है गुरुजी, ये मैं आपके दोष नहीं है, आप मुझे इसी प्रकार प्रश्न पूछते हैं, मुरे दोष देते हैं कि तेरा बुद्धि में भेद कैसे हो गया। मेरे बुद्धि में कोई भेद नहीं, मेरे बुद्धि तो अभेद है, भेद आपकी बुद्धि में है स्व पर, ये भेद आपकी बुद्धि में है। क्यों? बोले मैं आपको क्या कहूं, आप पूरी तरह से बस में हो मायापति के, तो इसलिए उन्हीं को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, भगवते तस्मै नमः, तस्मै भगवते नमः। हे प्रभु भगवान, आपकी माया के क्या कमाल है, क्या खेल है माया के। तो इसी माया के खेल से, माया के चंगुल से, माया के प्रभाव से अगर हमको बचना चाहें, और इसी मनुष्य जन्म इस संसार में देने का भगवान के एक ही लक्ष्य है कि इसी को समझो, माया को समझो और माया से निकलो। दिस इज द ओनली गोल ऑफ आवर लाइफ, इस माया को समझ करके माया से निकल पाए। नहीं तो भ्रमित, एक ही वस्तु को देख करके भ्रमित। एक जगह पर एक विद्वानों ने एक कथा कह रहे थे, अच्छा लगा मुझे, आप चाहे तो कंटेस्ट समझ सकते हैं। एक गांव में बड़ा पंडित गांव थे, पांच पंडित थे, पांच जन्मांध थे, बर्न ब्लाइंड, लेकिन बड़े भगवान जिसको कोई एक इंद्रिय नहीं देते दूसरे इंद्रियों को एक्टिव कर देते हैं, वो शक्ति हो जाता है उसमें, तो उनका बाकी इंद्रियां बड़े सक्रिय था। तो पांचों जन्मांधव पांचों आचार्य थे, आचार्य थे सारे, तो उनके बहुत फॉलोअर थे, शिष्यगण थे बहुत, तो जो भी वो ज्ञान देते थे बताते थे मुंह से, खूब धुरंधर ज्ञान से बताते थे, संहिता और सिद्धांत बताते थे। तो एक बार इस गांव में एक हाथी आ गया, हाथी आया, सो गांव बोले हाथी आया, हाथी आया, तो सब आचार्यों के जो डिसाइपल थे बोले गुरुजी हाथी आया, तो गुरुजी बोले हाथी मैं सुना तो हाथी के बारे में लेकिन कभी देखा नहीं, चलो मुझे थोड़ा हाथी का अभिज्ञता करा दो, दिखा दो बेटा। तो सारे शिष्यों ने अपने अपने गुरुजियों को लेकर के हाथी के पास लेकर आए, मतलब पांच मंडली आया, आपने अपने पांचों आचार्यों को साथ में लेकर के हाथी के पास लेकर के आए, अलग अलग ग्रुप उनके उनके आचार्य लेकर मतमने कर आए। तो एक पहले आचार्य आया, सबसे फ्रंट साइड में आया, हाथी के सूंड को पकड़ा, पकड़ कर बोला ओ आई गॉट इट, समझ में आ गया, ये तो सांप जैसा है, वो क्या हाथी सांप जैसा है, वो थोड़ा इसे कर रहा था ना, देख लिया मैंने, वो चले गए। एक्सपीरियंस करके पूरा एक्सपीरियंस्ड आपने सिद्धांत दिया, हाथी सांप जैसा है। दूसरे एक गुरुजी आए थे साइड से, तो उनके गुरुजी ने बोले ये हाथी है सामने खड़े है गुरुजी, तो गुरुजी तुरंत पकड़ लिए, क्योंकि वो तो अंधे हैं, स्पर्श अभिज्ञता लेंगे, छुए उसके पेट हो ना, ओरे रे ओहो समझ में आ गया, ये तो दीवार है, ये लिखे थेसिस, हाथी क्या है, हाथी तो एक दीवार है, ओ सिद्धांत दिए उन सब परफेक्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस में अभिज्ञता डायरेक्ट है। और तीसरी गुरुजी आए, ये आके पीछे पकड़े अब उनके पूछ को पकड़ लिए, अब बोले अरे तो रस्सी है, ओ थेसिस लिखे हाथी कुछ नहीं है, रस्सी के अलावा रस्सी है। और चौथे गुरुजी आए थे, वो पकड़ लिए उसका पैर को, बिल्कुल पैर के ऊपर नीचे इसी करके हाँ पकड़ कर देखो, ये तो खंबा है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रत्यक्ष अभिज्ञता लिए खंबा का, और थेसिस लिखे हाथी क्या है, एक खंबा है। और एक आचार्य थे, मैं सर गलती क्या, वो दृष्टि वाले थे, वो हाथी को देखे, वो देखे कि हाथी जैसी दिखा, जैसे हाँ आप और हम देखेंगे, आंख वाले देख लेंगे हाथी देखेंगे। तो ये पांचों स्टेटमेंट अलग अलग हो गया, वो पांचों जन हाथी को देखे, ऐसा नहीं भूल कहते नहीं, वो गए थे हाथी के पास भी गए थे, वो हाथी को डायरेक्ट एक्सपीरियंस किए, पकड़ करके छू करके अनुभव करके फिर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने कंक्शन किए ना, नॉट स्पेकुलेटर्स, बाकायदा गए थे हाथी के पास जा करके हाथी को पकड़े अनुभव किए तब अनुभव को व्यक्त किए कर रहे हैं। तो उनके जो अनुभव सब अलग अलग है, हाथी एक सांप है, हाथी एक दीवार है, हाथी एक खंबा है, हाथी एक रस्सी है, हाथी एक हाथी है, अब किसको मानेंगे, कोई तो गलत बोल नहीं रहा। और उनके फॉलोअर लोग सब उनके सिद्धांत को खूब बढ़ावा करें। तो इसी प्रकार भेदभाव हे सभी हाथी के ही अंग है, ये सूंड है, पूछ है, पेट है या पैर है, सारे हाथी का ही है, हाथी उसका अलग कुछ नहीं है, ये सबको मिलाने में हाथी है। तो ये चारों सिद्धांत को मिला दे, रस्सी खंबा दीवार और सांप को मिला देने से हाथी हो जाएगा क्या, नहीं, ये ऐसे माया है, वो सारे सत्य बात को चारों सत्य को मिलाने पर भी हाथी के प्रतीति नहीं हो सकता, और हाथी के प्रतीति भी इसे अलग करके भी नहीं समझ सकते हैं। हाथी के प्रतीति तो केवल जो चांख आंख वाले है, दृष्टि से देखा अनुभव का वही कर सकता है, बाकी इस प्रकार से संभव है ही नहीं। जिनको डायरेक्ट भगवत की कृपा से भगवत अनुभूति हुआ है, बाकी किसी माध्यम से नहीं है, केवल भगवत कृपा या भगवत जन की, भगवत जन की कृपा को भगवत कृपा माना जाता है, भगवत कृपा हमेशा भगवत जन के अनुगामिनी है, सीधा भगवान की कृपा नहीं होता। तो भगवत जन की कृपा, इसलिए गुरु कृपा से प्रभुपाद जी ने कहते हैं ये शुरुआत होता है, ये ज्ञान गुरु कृपा से, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, इससे शुरू होता है। भगवान की भक्त की कृपा से ही उपलब्ध भगवत ज्ञान को अगर हम अनुभव करके और उनको अनुभव करके भगवान को भजन करें, भगवान कृपा करे, मैं अनुभव गम्य कर पाऊं, उसको अनुभूत हो जाए, केवल सुन करके नहीं हो जाएगा, लिख देने से नहीं हो जाएगा, बोल देने से नहीं हो जाएगा, ना ना ना, ना। इसीलिए तो सिद्धांत में उपनिषद में कहा गया क्या ना ही नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधसा ना बहुने श्रुते न ओ तो विवृणते तनु ओ जिनको होगा वो खुद सुनकर के उनको देंगे। ओ मालिक स्वयं मायापति जिनको बोलेगा कि तुम ये लो तो वही उनका होगा, बाकी किसने हाथ पर पीठ पाट लो, खूब श्लोक याद कर लो, खूब कुछ करो ना, कुछ नहीं होगा ना तत्व ना मेधसा ना कुछ नहीं ऐसे ना प्रवचन नो नो, ये तो वही खुद सिलेक्ट करके उनको देंगे तब होगा, तब वो माया से पार पाएगा। ये प्रहलाद भगवान नृसिंहदेव जी चुन चुके हैं, अपना बना चुके हैं, इसलिए उनको ये डायरेक्ट अभिज्ञता है, अब अनुभव हो रहा है। ये क्या मुझे बोलते हैं बुद्धि में भेद, ये बुद्धि में भेद तो तुम्हारा है, सारे संसार का सबका है, केवल अभेद बुद्धि वाले वही हैं जिनको भगवान के माया से पारे हो चुके हैं, जिनके भगवान की उन्मुखता, भगवान के तत्व ज्ञान का वास्तविक उपलब्धि भगवत कृपा से ही हुआ है, भगवान ने खुद कराए जिसको, वही केवल अभेद बुद्धि वाले होंगे, बाकी सारे स्व और परत लेकर के फंसेंगे। जैसे कभी कभी मायावादी लोग बोलते हैं कि नहीं ये सारे ईश्वर है, नारायण, सब नारायण है, फंसे हैं माया में, माया से तार जाएंगे सब भगवान हो जाएंगे, बोले इस प्रकार के एकत्व ये मूर्खत्व है, ऐसा नहीं है। कभी भी दास कभी प्रभु हो ही नहीं सकता, कभी जीव कभी ईश्वर हो ही नहीं सकता, ये दो सत्ता हमेशा नित्य सत्य है, तो फिर एकत्व कैसे है ना? केवल ईश्वर को छोड़ करके ईश्वर के अलावा जावतीय तत्व जावतीय वस्तु सब दासत्व के सूत्र में बंधे हुए हैं, इसलिए सब एकत्व हैं। इस प्रकार एकत्व को मानना पड़ेगा। हरे कृष्ण।